सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनि लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे पंच परमेष्ठि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की पाक्षिक श्रावक नैष्टिक श्रावक और साधक श्रावक की चर्चा कल हो रही थी। पाक्षिक श्रावक अपना नाम पाक्षिक ऐसा रखता है। पाक्षिक का तात्पर्य पक्ष को ग्रहण करने वाला। कैसा पक्ष? परमार्थ, भौतिक नहीं, परमार्थ। परमार्थ का पक्ष रखने से अंतरंग की यात्रा करना संभव है और भौतिक पक्ष रखने से बहिरंग यात्रा चल पड़ती है। बहिरंग यात्रा के माध्यम से आत्मकल्याण संभव नहीं हो पाता और अंतरंग यात्रा से आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाता है। ऐसा वह पाक्षिक श्रावक किसका पक्ष लें, बहिरंग में किसका पक्ष लें और अभ्यंतर अंतरंग में किसका पक्ष लें, तो यहाँ यह अवश्य विचार करना चाहिए। अंतरंग में अपने आत्मगुणों की उपलब्धि का पक्ष लें और उनके विकास के लिए बहिरंग में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, सच्चा धर्म, सच्चा तत्व, इनका पक्ष लें। तो पक्ष आवश्यक है। एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो एक पंख से उड़ नहीं सकता, दो पंख आवश्यक हैं। एक दो पंख हैं और एक ही पंख को फटफटाता है तो भी उड़ना संभव नहीं है, उसके लिए दो पंख आवश्यक हैं। दोनों पंखों को समान रूप से वह जब फटफटाने लगता है तो आकाश में उड़ने का आनंद की अनुभूति करता है। कैसा पक्ष? दो पक्ष जो अपने से ही जुड़े हुए होना चाहिए। पक्षी के दो पंख अपने शरीर से जुड़े रहते हैं तो वह पक्षी उड़ सकता है। एक पंख अपने शरीर से जुड़ा हुआ है और दूसरा पंख कटा हुआ है तो वह भी उड़ नहीं सकता। दो में से एक भी कटा हुआ है, उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। अंतरंग में अनंत गुणों का पक्ष लेना भी आवश्यक है और बहिरंग में सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हमारे अनंत गुणों का परिचय कराते हैं, हमको वीतराग बना सकते हैं, हमको कषाय से मुक्त कर सकते हैं, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनके बिना हम अपने को जान नहीं सकते। जहां हम चूकते हैं वे हिंट करते, यहां चूक रहे हो, बहिरंग पक्ष ये पंख के समान है, एक पक्षी के दो पंख हैं, दोनों को फटफटाता है, और एक अलग कर दो उसमें से तो नीचे गिर जाता है। इसलिए कहा गुरु बिना जीवन शुरू नहीं, आकाश में उड़ना शुरू ही नहीं हो सकता। अंतरंग पक्ष को प्रबल बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा को अपने अनंत गुणों की प्राप्ति के लिए समर्पित करना पड़ेगा। अपने ही गुणों को पाने के लिए, अपनी आत्मा को अपने अनंत गुणों के लिए ही समर्पित करना पड़ेगा। हे आत्मा, तुझे अनंत गुणों को प्राप्त करना है, अंतरंग पक्ष को मजबूत बना ले। अंतरंग पक्ष मजबूत होने लग जाएगा तो निश्चित रूप से हम अभ्यंतर के सारे विकारों को दूर करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कैसे विकार? अभ्यंतर कषाय परिणति को, अभ्यंतर मिथ्यात्व परिणति को, अभ्यंतर अज्ञान परिणति को, ये तीन ही प्रकार के विकार हैं। वैभाविक परिणति तीन प्रकार से आत्मा के भीतर, अज्ञान रूप वैभाविक परिणति, मिथ्यात्व रूप वैभाविक परिणति और कषाय रूप वैभाविक परिणति। ये वैभाविक परिणति तीनों जब तक हैं, जीव चिल्लाता है, रोता है, ये चलता रहता है। ये जीव ही चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है विचार करें तो। वैभाविक परिणति के कारण से ये वैभाविक परिणति किसके पास नहीं है विचार तो करो, सबके पास है। इस वैभाविक परिणति से दूर होने के लिए अभ्यंतर पक्ष को मजबूत बनाना आवश्यक है। अभ्यंतर पक्ष के लिए हमें समर्पित रहना आवश्यक है, हमें अपने गुणों को पाने के लिए हमें समर्पित होना है। ये सत्य धर्म की आराधना है, ये सत्य धर्म की उपासना है। इस उपासना से हम अपने को उपलब्ध होते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। यात्रा का प्रारंभ पाक्षिक श्रावक बनने से यहां से शुरू होता है। पाक्षिक, पक्ष को ग्रहण करने वाला होने से इस श्रावक को पाक्षिक श्रावक कहा, और नैष्टिक ये भी नाम सार्थक है। पाक्षिक बनने के बाद वह दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के तरफ उसका झुकाव हो जाता है। पाक्षिक में दो के तरफ ही झुकाव था। पाक्षिक श्रावक केवल सम्यक दृष्टि कहलाता है। उसके पास में दो चीजें हैं, एक सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित है, एक दूसरा क्या है, 8 मूल गुणों का धारण करता है। बाहर में मानवीयता के सारे लक्षण हैं, बाहरी अनुष्ठान में, बाहरी आचरण में मानवीयता के गुण उपलब्ध हैं आचरण में, और अंतरंग में सम्यक दर्शन को निर्दोष रखता है। ये दो पक्ष हो गए, ये भी दो पक्ष हो गए, लेकिन ये स्वयं के ही पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों का जो निर्देशक हैं वो हमारे सच्चे देव, हमारे सच्चे गुरु और अपना सच्चा शास्त्र है। हमको ये संपुष्ट कराते, क्या संपुष्ट कराते हैं, सम्यक दर्शन को पुष्ट पुष्ट कराते हैं। और क्या कराते हैं, आठ मूल गुणों को पुष्ट करने का उपदेश देते हैं। ये किसका कार्य, गुरु का कार्य, देव का कार्य, देव का कार्य, गुरु का कार्य। तो देव हमारे लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये आठ मूल गुण और ये जो सम्यक दर्शन आदि गुण हैं ये अपने हैं, अपने आत्मा के हैं, हमारा अंग है, हमारा पक्ष है, हमारा आत्म कल्याण का, हमारे हित का यह धर्म है। आठ मूल गुण हमारा बहिरंग आचरण है तो 25 मूल गुण निर्दोष धारण करना, 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का निर्दोष पालन करना यह हमारा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अभिन्न अंग है। इन दोनों के पक्ष को लेने वाला पाक्षिक श्रावक माना जाता है। बाहर में किसका नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का। मूल गुण किसके, अपने ही तो हैं। सम्यक दर्शन किसका, अपना ही तो है। ये तो एक पंख हो गया हमारा, एक तरफ का एक पंख हो गया। अब एक तरफ सच्चे देव शास्त्र गुरु वाला जो रास्ता है, मार्ग है, उपदेश है, उसके अनुसार हमने अपने पक्ष को बना लिया है। अंतरंग में सम्यक्तों के पक्ष को और आठ मूल गुणों के पक्ष को, ये पक्ष दोनों मिलकर के ही पाक्षिक श्रावक का स्वरूप है। पाक्षिक श्रावक यानी कि सम्यक दृष्टि और आठ मूल गुण के धारी। और इन इस सम्यक्तों को और इन आठ मूल गुणों को जिनेन्द्र भगवान के उपदिष्ट तत्वों के आधार से ग्रहण किया है क्या, इधर उधर से? हाँ, उपदेश तो सुना है ना, तो उपदेश सुनने के लिए उनके पास जाना पड़ा ना, तो उस पक्ष को ग्रहण किया है ना, उन्हीं के उपदेश को ग्रहण किया है ना, तो उन्हीं से किया है तो उस पक्ष को भी आपने ग्रहण कर लिया है। अन्यथा संसार में बहुत कुछ उपदेश थे, उन सब से अलग होकर के आप यहीं पर क्यों आए? क्योंकि सम्यक दर्शन की उपलब्धि अन्यत्र संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र आठ मूल गुणों का संभव तो है। हम अपने सदाचरण के माध्यम से मानवीय धर्म को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, कुलाचार धर्म को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान कहते हैं ये मानवीयता अपने पास भी है और सभी के पास भी। सभी के पास का मतलब ऐसा मत सोचो कि मानव जो अज्ञानी है उनके पास भी पाया जाता है, ये मलेच्छ खंड में भी संभव है क्या? नहीं, मानवीयता संभव है, वहां पर भी शाकाहारी होना संभव है। मद्य मांस मधु का त्याग और पांच स्थूल अनुवृतों को ग्रहण करना ये सदाचरण कहलाता है, ये मानव जीवन का सामान्य मानवीयता है, प्रारंभिक मानवीय सभ्यता को जीने का रास्ता है। इसको मानव कुलाचार कहो या धर्म के क्षेत्र में जाने के लिए एक धर्म कुलाचार कहो या इसको कुलाचार यानी कुलाचार। हमारी माता पिता के वंश में चले आए हुए आचार विचार को कुलाचार कहते हैं। ये कैसे कुलाचार, हमारे परंपरा से चले आए, तो आठ मूल गुण वैसे वंश की परंपरा से चले आना चाहिए, पर आए नहीं। आए नहीं है तो हम कुलाचार में शामिल नहीं, कुलाचार च्युत माने जाएंगे। और फिर हम क्या हैं, हम क्या हैं तो देख लो क्या है। हम कुछ नहीं, हम एक मनुष्य हैं बस, मनुष्यता नहीं, मनुष्यत्व नहीं। और यदि ये कुल परंपरा से चले आ रहे हैं तो हमारे पास हमारी कुल परंपरा से मनुष्य भी थे और मनुष्यत्व भी था। इस मनुष्यत्व को कौन देता है? उसको देने वाला भी कोई गुरु ही होता है। हम जन्मतः ये जन्म के गिफ्ट नहीं हो सकते, जन्म के बाद किसी गुरु के माध्यम से ही, उपदेश के माध्यम से ही, ये उपदेश मिलने पर ही मानवीयता हमारे पास आती है। तिर्यंश प्राणियों में भी अगर सच्चे गुरु मिले, उनके उपदेश के वचन मिल गए, तो वो भी परिवर्तित होते हैं। अगर कोई तिर्यंश मांस खाता है और वह पाप समझ में आता है तो उसको त्याग का संकल्प ले लेता है, उपदेश से प्रभावित होकर। अपने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का ही दसवां भाव देख लो क्या था। शिव पर्याय में थे, त्रिंच गति में थे, उपदेश किसका सुना? चारण रिद्धि गुरु का, दिगंबर मुनि का चारण रिद्धि गुरु का उन्होंने उपदेश सुना। उसने उपदेश सुना और उस शिव ने आंखों में आंसू बहाया, अज्ञानवश मैंने क्या क्या किया, ये इतना बड़ा पाप दिखा रहे मेरे जीवन के लिए, अज्ञान के लिए। ऐसे सदगुरु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, ये कह करके उसने त्याग कर दिया, जीवन पर्यंत मांस का त्याग, मांसाहारी होकर मांस का त्याग। मांस छोड़ो इसका उपदेश शिव के लिए देना सही है, क्योंकि वो मांसाहारी ही है। पर एक शाकाहारी के लिए तो मांस छोड़ो ये उपदेश देना, ये लज्जा की बात है ना। ये क्या कर रहा है नाटक? शाकाहारी होकर मांस खाने का अभ्यास कर रहा है, तालीम कर रहा है, पचाने का कोशिश कर रहा है, ठीक नहीं। क्यों में और मनुष्य में यदि तुलनात्मक विचार किया जाए, कौन बुद्धिमान? अब बुद्धिमान होकर के ऐसा काम, बुद्धिमान होकर के पाप का काम नहीं, ठीक नहीं। शिव से कहीं ज्यादा भटके हुए मत बनना। शिव तो अज्ञानवश भटक गया था, शिव का अपना आहार तो मांसाहार ही, लेकिन वह जब छोड़ने के लिए साहस कर सकता है तो मनुष्य क्या साहसी नहीं है? मनुष्य को साहस करना ही नहीं चाहिए था, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था, उसको छूना भी नहीं चाहिए था। मांस को छूने का अधिकार भी क्या है मनुष्य को? शाकाहार आहार नहीं क्या? उससे पेट नहीं भरता क्या? उसकी उससे क्या जिंदगी नहीं बनती क्या? हम जीवित नहीं रह सकते क्या? हम प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते? फिर क्यों इतना बड़ा पाप का बोझ? मान हो, बुद्धिमान होकर बुद्धिहीन क्यों? चारण रिद्धि मुनि महाराज के उपदेश से तुरंत उसने आंखों में आंसू डालकर, चरणों में बैठकर नमस्कार करके, अपनी आत्मा का संशोधन आलोचन करके, दोषों का आलोचन किया, आत्मा का संशोधन किया और फिर चरणों में बैठ करके उसने संकल्प लिया कि मैं आजीवन पर्यंत मांस का त्याग करता हूँ, शाकाहार से रहूंगा। और वह शिव क्या खाने लगा? घास, पत्ते, फल फूल अगर मिले ठीक, नहीं भी मिलता है तो उस दिन उपवास। शरीर की क्या कीमत है व्रतों के सामने? एक दिन उपवास करना पड़ा, इतना मोह क्यों? शाकाहार मिला खाया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने ला करके दे दिया खा लिया, नहीं दिया नहीं खाया। अब वो दसवें भव के पीछे, दसवें भव में रहने वाले उस शिव को कोई आदमी ले जा करके अपने घर में भी पाल ले, पाल सकता है? उससे डरेगा नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आपके घर में तो एक पंचम गुणस्थान व्रति जीव आ गया, भव्य जीव आ गया, एक तीर्थंकर का जीव आ गया। पालो उसको, रक्षा करो, शाकाहार से पालो। इतना भी हमारा पुण्य नहीं है? क्यों पुण्य नहीं है? तो शिव के रास्ते को हमने ले लिया और हमारे रास्ते को शिव को दे दिया हमने। हमने रास्ते को अदली बदली कर दिया तो उसने के लिए मिला है। यह जीवन रत्न है, जागो, जागने से ही सवेरा है, अन्यथा रात ही रात है। पक्ष, उस शिव ने दोनों पक्ष को ले लिया। उसने केवल शाकाहार का ही संकल्प नहीं लिया, शाकाहार का संकल्प तो आठ मूल गुणों के कोटि में आ गया, स्थूल हिंसा का त्याग हो गया। और अंतरंग पक्ष में उस अहिंसा और वो मुनि के उपदेश के प्रति श्रद्धा जगी कि नहीं? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मुनि के वचन ही तत्व हैं और उस तत्व को समझकर अर्थ निकाला और अर्थ पर श्रद्धान किया। अहिंसा मार्ग ही मार्ग है, इसके बिना हमारे लिए कोई शरण नहीं है और कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं। अंतरंग में अहिंसा पक्ष को धारण किया, हिंसा पक्ष को त्याग कर अहिंसा के पक्ष में आया, अहिंसा पक्ष को धारण किया। और देव, शास्त्र, गुरु, गुरु के प्रति भी आप समर्पित हो गए। देव नहीं भी मिले जीवन में तो केवल एक गुरु के श्रद्धान से भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि, आत्मकल्याण का रास्ता प्राप्त हो सकता। पर डरना नहीं, आत्मकल्याण के रास्ते पर डरना नहीं। ये वो करना पड़ेगा, ये हमसे नहीं होता, वो हमसे नहीं होता, डरना नहीं, सब हो जाएगा। आत्मा अनंत शक्तिशाली है कि किंचित शक्तिशाली है, क्या मानते हो? हाँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। छोटे मोटे प्रारंभिक कार्य को करने के लिए ही जब मैं इतना सोचूंगा तो आगे का क्या कर पाऊंगा? उन अनंत शक्ति में से थोड़ी शक्ति जगाओ, थोड़ी थोड़ी। 100 अगर है तो 1% जगाओ, एक ही, 99 रहने दो। उतना भी जगा करके पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया तो शिव ने कितना जगाया, क्या कहोगे उसको? 100 में से कितना जगाया बोलो? उसका 100% तो मांसाहार का रास्ता था और 100% उसने शाकाहारी रास्ता अपना लिया, तो 100% जग गया वो। तो एक तिरंच भी तो जग सकता है 100%, तो मनुष्य क्यों नहीं जग सकता? उसको ताकत ज्यादा कि हमको ताकत ज्यादा, क्या मानते हो? शिव में हाँ पुरुषार्थ जाग उठा, यानी पुरुषार्थ को जगाए बिना भय हमारा जाता नहीं है। पुरुषार्थ है तो सब कुछ है। हम धर्म की चर्चा करते करते कब तक बैठेंगे? धर्म केवल चर्चा की वस्तु है क्या? फिर आचरण की भी वस्तु है। उस आचरण को चाहे एक अंश में जगा लो, चाहे दो अंश में जगा लो, चाहे 100 जगा लो, चाहे 50 जगा लो, जगाना तो पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है ना। चारित्र की आस्था भी सम्यक दर्शन है। चारित्र अहिंसा का मार्ग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं, इनको त्यागना चारित्र है। मैं त्यागूं इस प्रकार के जो भाव और भावों के साथ साथ जो पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ, हमारे भाव जो छटपटाते हैं उसके लिए, ग्रहण करने के लिए, वो चारित्र धर्म है। वह चारित्र धर्म आना आवश्यक है। वो क्षायोपशमिक भाव वाला चारित्र है। जब तक अनंत अनुबंधी का क्षायोपशम नहीं होगा तब तक 8 मूल गुण नहीं आ सकते। और जब तक अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का क्षायोपशम नहीं होगा तब तक अनुवृत्त नहीं आ सकती, प्रतिमाएं नहीं आ सकती जीवन में। जब तक प्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभशम नहीं होगा तब तक सकल चारित्र जीवन में नहीं आ सकता। भावों से आना आवश्यक है ना, भाव। तो भावों से आने के लिए भावपूर्वक ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और भावपूर्वक पुरुषार्थ करते समय परमार्थ को ही दृष्टि में रख करके भावों को पुरुषार्थ के द्वारा लगाना पड़ेगा। चारित्र क्षायोपशमिक भाव है, औदयिक भाव नहीं। औदयिक भाव तो बंध का कारण होता है और क्षायोपशमिक भाव संवर और निर्जरा का कारण होता है। ये बिंदु नोट करने लायक, क्योंकि ये स्वाध्याय करते समय भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि देश संयम जो उत्पन्न हुआ, प्रतिमाएं जो हमने ग्रहण की, करने के बाद हमारा जो पंचम गुणस्थान बना, ये पंचम गुणस्थान प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से बना या अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के क्षोभशम से बना, ये प्रश्न आएगा। तो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के क्षोभशम से बना, यानी जो अप्रत्याख्यानावरणी पाप कर्म हमको पाप में डाल रहा था, गलत रास्ते पर ले जा रहा था, आश्रय और बंध के मार्ग पर ले जा रहा था, वह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म क्षयोपशम अवस्था को प्राप्त हुआ, यानी उपशमित हुआ, दब गया। वह भीतरी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय तो उपशमित हुआ। तो चारित्र करने के भावों से ही उपशमित हुआ या भाव के बिना ही हुआ? तो पाप को छोड़ने के भावों को चारित्र कहा। ये चारित्र के परिणाम मोक्ष मार्ग में आवश्यक हैं कि अनावश्यक हैं? आवश्यक है ना। मैं चारित्र धारण करता हूं इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बंध का रास्ता अपना रहा हूं, मैं औदयिक भाव का रास्ता अपना रहा हूं, नहीं। मैं चारित्र को अपने वश में रखकर उनका क्षोभशम दशा को प्राप्त करके मैं चारित्र ग्रहण करने जा रहा हूं। पंच पापों को त्याग के जो परिणाम होते हैं वो 1 से लेकर 99 तक होते रहते हैं। एक एक सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। एक छोड़ दिया तो समझो कि आठ मूल गिन के धारी हो गए। जब 100 के 100% आप असंयम के कोटि में थे, थोड़ा सा संयम के पक्ष में मैं जाऊं इस संकल्प के साथ, 1% अगर आपके जीवन में चारित्र आया और 8 मूल गुण वाला आया, मध्य मांस मधु का त्याग और 5 स्थूल हिंसा का त्याग, इस प्रकार का चारित्र आया तो ये बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि आप पाक्षिक बन गए, पाक्षिक बन गए। अंतरंग दृष्टि क्या है? परमार्थ की, इसलिए आप पाक्षिक कहलाए, पाक्षिक। पाक्षिक के पास दोनों होते हैं, सम्यक दर्शन भी होता है और 8 मूल गुण भी होते हैं। पाक्षिक यह नाम, तो पक्ष की अपेक्षा से, अंतरंग पक्ष और बहिरंग पक्ष। बहिरंग में आपने 8 मूल गुणों को धारण किया और अंतरंग में सम्यक दर्शन को धारण किया। 8 मूल गुणों को धारण करने की जिसके भाव हो गए, उसका अनंतानुबंधी कषाय उपशमित हो गया, प्रारंभ हो गया धर्म का रास्ता, आत्म आराधना की रास्ता प्रारंभ हो गया। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। 8 मूल गुण और सम्यक दर्शन अपने आत्म कल्याण के लिए सर्वप्रथम पालन करना है। उस शिव ने इतना बड़ा पुरुषार्थ कर लिया और 10वें भव में जाकर के 24वां तीर्थंकर बन गया। महावीर भगवान का जीव ही था वो, तीर्थंकर बनने का जो पुरुषार्थ, जो मतलब लक्षण फूटे, वो वहां से फूट गए। जीव किसी भी भाव में रहे, जो महान कार्य करता है साहस के साथ, वहां से वह तीर्थंकर बनने के शक्ति को भी जगा सकता है। जगाया उन्हें, उस भाव में नहीं जगाया, लेकिन उस भाव में तो स्टार्ट हुआ, वो पाक्षिक श्रावक की कोटि में आ गया। वो श्रावक नहीं था, पाक्षिक तिरेंच, पाक्षिक पशु है? हाँ, गुण तो श्रावक के ही हैं, परंतु श्रावक की उपमा भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मनुष्य नहीं है इसलिए श्रावक नहीं कहा। हाँ, लेकिन त्याग तो श्रावक से बढ़कर के एक साथ, एक झटके में, विचार नहीं किया उसने, एक झटके में त्याग कर दिया। सुनते ही शाकाहारी बन गया, तुरंत निर्णय ले लिया। नहीं, महाराज के वचन तो सामान्य ही होते हैं, परंतु ग्रहण करने वाला विशेष रूप से ग्रहण करता है, प्रभावित अधिक होता है तो विशेष ग्रहण होता है, प्रभावित कम होता है या धीरे धीरे होता है तो उसको धीरे धीरे ग्रहण होता है, क्योंकि उसके जीवन के सामने बहुत सारी समस्याएं, वो इधर उधर देखता है, इसकी इसमें रास्ता है या नहीं देखता है, ऐसा चलता रहता है, विचार तो रहते ही हैं। जीव कल्याण तो चाहता है, लेकिन इस रास्ते से कैसे गुजरूं, ये चिंतन बहुत करता है। धर्म को भी साथ लेकर के मुझे चलना है और ये सारी समस्याएं मेरे सामने हैं, इसमें से कैसा रास्ता निकालूं, इसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और पुरुषार्थ में वो उतना ही ग्रहण करता है जितना उसके लिए संभव है, और अनुकूलता दिखे तो एक झटके में सब छोड़कर महाव्रती मुनि भी बन जाता है। एक साथ मुनि बनना संभव नहीं है तो प्रतिमाधारी बन जाता है। प्रतिमाधारी बनना संभव नहीं है तो कम से कम पाक्षिक श्रावक आठ मूल गुण और सम्यक दर्शन निर्दोष पालन करता है। और ये कौन सा गुणस्थान हुआ ऐसा करने से? ये चौथा गुणस्थान, पाक्षिक श्रावक का चौथा गुणस्थान। यानी पाक्षिक श्रावक सम्यक दृष्टि कभी भी मद्य मांस मधु का सेवन करने वाला हो ही नहीं सकता। यानी जो जो सम्यक दृष्टि है वह वह ये तीन मकार का सेवन नहीं कर सकता। और सम्यक दर्शन रहित अवस्था में ही ये तीन मकार का सेवन होना संभव है। होता ही है ऐसा नियम नहीं? मिथ्यात्व सहित जीव मांसाहारी ही होता है, नियम बनाओगे? नहीं। मांसाहार न करने वाले म्लेच्छ खंड में भी जीव हैं और शाकाहारी जीव भी हैं, मनुष्य। म्लेच्छ खंड के मनुष्य शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। पर जो शाकाहारी हैं उनको क्या सम्यक दृष्टि को होगी? सम्यक दर्शन अलग वस्तु है, वो तो आत्म कल्याण का रास्ता है, आत्म कल्याण करने का रास्ता है। वहां तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं। शाकाहारी भले ही बनो, शाकाहारी बनना तो हमारा एक भौतिक शारीरिक जीवन है, शाकाहार शारीरिक जीवन। पर सम्यक दर्शन शारीरिक जीवन है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन तो आत्मिक जीवन है, धर्म का जीवन है। धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है, आत्मा में ही गुण है, अनंत अनंत गुण। उसमें सम्यक्त्व भी एक गुण है, श्रद्धा भी एक गुण है, चारित्र भी एक गुण है। आत्मा में इन गुणों को, सोए हुए गुणों को ज्ञान जगाता है। कौन जगाता है? ज्ञान। अनंत गुणों को ज्ञान ही जगाता है। तो हमारे ज्ञान ने श्रद्धा गुण को जगाया। श्रद्धा किस पक्ष में? अंतरंग पक्ष में भी श्रद्धा, बहिरंग पक्ष में भी श्रद्धा। बहिरंग आठ मूल गुण और अंतरंग सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व के भाव। और आठ मूल गुण के भाव ये अंतरंग पक्ष, और बहिरंग पक्ष ये है कि सम्यक्त्व की अपेक्षा से छह अनायतनों से बचना, ये बहिरंग पक्ष। बचना भी पक्ष है, छह अनायतनों से बचना भी पक्ष है। और स्थूल पाप से बचना ये भी पक्ष है, बहिरंग पक्ष है। और अंतरंग में क्या? स्थूल पाप के भावों से बचना, पाप के कार्य से बचना, पाप के भावों से बचना। दो प्रकार की बातें हैं, कार्य से भी बचना पड़ेगा और भावों से भी बचना पड़ेगा। कार्य से बचने के बाद भी भावों से बचते रहना पड़ेगा। क्या भावों से नहीं बचे तो चलेगा? नहीं चलेगा। पहले भावों से बचना पड़ेगा और भावों को आचरण में साकार करना पड़ेगा। साकार हो गए, ये पाक्षिक श्रावक का स्वरूप हो गया। कल एक दो वो रह गए थे मूर्ता के भेद, उनको ले लेते हैं। देव मूर्ता के दोष, देव मूर्ता दोष, इसका क्या स्वरूप? लौकिक फल व वरदान की इच्छा से रागी देव को भजना, रागी देव को भजना देव मूर्ता है। रागी को क्यों नहीं भजना? रागी को भजने से राग मिलेगा, इसलिए। वीतरागी को क्यों भजना? वीतरागी को भजने से वीतरागता मिलेगी, धर्म की उपलब्धि होगी, आत्म कल्याण होगा, इसलिए। रागी को न भजने का मतलब ये नहीं कि उनसे हमें द्वेष है, द्वेष नहीं। आत्म कल्याण के लिए वे हमारे जीवन में अनावश्यक है। रागी देव अनावश्यक होता है, द्वेष का कारण नहीं बनता। रागी देव द्वेष का कारण तब बनेगा रागी जीव जब आपको कुछ करने लग जाए, अनिष्ट अनिष्ट करने लग जाए, कौन देव है मुझे अनिष्ट करता, ऐसे द्वेष तो होगा, मुझे देव ऐसा क्यों कर रहा है, ये अनिष्ट तो होगा, द्वेष तो होगा। देव के ऊपर भी आप द्वेष कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आपको पीड़ित करने लग जाए तो उसको छोड़ के भागोगे, और आपको हेल्प करने लग जाए तो उसके पीछे पीछे भागोगे। मेरे साथ रहो जहां कहीं भी जाता हूं, कहेंगे ना। लेकिन देवता भी साथ हमारे साथ रहता है तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से, और पुण्य कर्म के उदय से जब देवता हमारे साथ रह सकता है तो पुण्य कर्म करो ना। देवता को क्यों भज रहे हैं, देवता भजे बिना आता है। देवता मनुष्यों के रक्षक हैं, जो बड़े बड़े तीर्थंकरों के ऊपर ऊपर भी उपसर्ग आए तो उनके पास आए, क्या ये पुण्य के बिगर आए कि पुण्य से आए, तो पुण्य तो किया होगा ना, तीर्थंकर ने किया था, क्या किया था, उपकार का काम किया था, किस पर उपकार का काम किया था, हाँ उनके प्राणों को बचाने का प्रयत्न किया था, बच नहीं पाए थे, उनके प्राणों को बचाने का प्रयत्न किया था, बच नहीं पाए थे, कट गए थे, मरते समय नमः सिद्धेभ्य इतना तो कहो, सद्भावना व्यक्त करो, प्राण छूट रहे हैं, सद्भावना रख करके आत्मा का कल्याण हो, आत्मा को आशीर्वाद दिया था, तीर्थंकर आशीर्वाद नहीं देते पर मंत्र सुनाए, नमः सिद्धेभ्य, तीर्थंकर के मुख से एक शब्द भी निकले तो जीव का कल्याण हो जाता है। शब्दों में इतनी शक्ति, इतना पावर रहता है कि अंतरंग में सोई आत्मा को जगा देता है, सोई चेतना जग जाती है। नमः सिद्धेभ्य कहते ही उसके कषाय इतने मंद हो गए और भाव इतने विशुद्ध बन गए कि उसको देवगति में जाना पड़ा। जाते समय देवगति में गए लेकिन सम्यक तो नहीं था, वैमानिक देव बनने का सौभाग्य नहीं उठा पाए। ये भवनवासी और व्यंतरवासी जो होते हैं इस पर्याय में चले गए, इस पर्याय में जाते समय वो त्रिरंच दोनों किस गुणस्थान में रहे होंगे, चौथे में, चौथे में कैसे, हाँ चौथे में होते तो कौन से देव बनते, वैमानिक बनते, और पहले में है तो कौन से देव बनेंगे, भवनवासी बनेंगे। और भवनवासी क्यों बने, क्योंकि देवायु का जब उन्होंने बंद किया तो भवनवासी लायक ही देवायु का बंद था, उससे ज्यादा अगर बंद होता तो ये मिथ्यात्व को लेकर के भी वैमानिक देव बन सकते थे। ऐसा कोई नियम नहीं कि कोई देव मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव नहीं बन सकता हो, तो कोई त्रिरंच मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव नहीं बनता हो, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जीव और मिथ्या दृष्टि मनुष्य गृहस्थ की अपेक्षा से, मुनि की अपेक्षा से नवग्रहिक तक जाता है, मुनि भी तो मनुष्य है ना। मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनि महाराज कहां तक जाते हैं, नवग्रहिक तक, और गृहस्थ कहां तक जाता है, नहीं नहीं 12वें स्वर्ग तक। गृहस्थ मिथ्यात्व के साथ बारहवीं स्वर्ग तक जा सकता है, बारहवीं स्वर्ग तक जा सकता है। तो बारहवीं वैमानिक देव कौन? स्वर्गों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। प्रथम स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के जितने देव हैं सब वैमानिक वैमानिक। तो मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच और मनुष्य, ये दोनों वैमानिक बन सकते कि नहीं? तो अधिक से अधिक कहां तक जा सकते? पहले स्वर्ग से बारहवीं स्वर्ग तक जा सकते। और अगर वही मनुष्य द्रवलिंग को धारण कर ले नवग्रवीक तक, भावलिंग को धारण कर ले तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। वे दोनों क्यों गए? पंच संगी पंचेंद्री थे, जाना चाहे तो बारहवें स्वर्ग तक जा सकते थे, किंतु वैमानिक देव नहीं बन पाए, व्यंतर बने, भवनवासी बने। क्यों? आयु का बंद उतना ही किया था, ज्यादा आयु का बंद करता तो वैमानिकों में जाता, कम आयु का बंद किया था तो कम आयु वाले तो यहां नीचे होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष, इसमें जाकर के वो जन्मे। तीर्थंकर उपकार किए थे, हमने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो भरपूर खाना खा लिया, खानावली का भी, फाइव स्टार होटल का भी, और वहां पर कोई विवेक नहीं रखा ये शाकाहार है क्या, ये मांसाहार है, जो थाली आया सब खा लिया, थाली भी खा लिया, चार नहीं रखा हमने, होटल में गया, भक्ष अभक्ष सब भक्षण कर लिया। अब पाप किया क्या? पुण्य किया है, पाप किया है, और फिर देव के पीछे भाग रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, आवा आवा आवा, आवा, आवा। गूंज रहा शब्द, आओ आओ, कैसे आएगा, कौन आएगा? पुण्यात्मा हो तब आते हैं या पापात्मा हो तब आते हैं देव? हमारा पुण्य साथ देता है हर जगह। हाँ देखो, बंद तो पहले भी हुआ रह सकता है, उसी समय बंद हो ये भी नियम नहीं, और हो सकता है उसी समय में बंद भी हो, तो इसकी चर्चा वहां कथा में नहीं मिलती। बंद जो है अंतिम समय तक हो सकता है, और आयु कर्म का विशेष उत्कृष्ट यानी बहुत ज्यादा आयु बंधे इसके लिए परिणामों की विशुद्धि चाहिए, और उन दोनों जीवों को, सर्प को, उन दोनों जीवों को परिणामों की विशुद्धि जब नहीं थी उस समय देवायु का बंध हो गया था, और वो कम हो गया, कम आयु का बंध हुआ, और उसके उपरांत मरण आया। मरण के काल में भले ही तीर्थंकर के माध्यम से उसको कुछ संबोधन मिल रहा है, कुछ वाणी सुनने को मिल रही है, कुछ मंत्र सुनने को मिल रहा है, तो भी क्या, वहीं जाना पड़ेगा, जितनी आयु है वहीं जाना पड़ेगा। ये कोई आवश्यक नहीं कि अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए कोई बाहरी सहयोग आवश्यक है। अंतरंग पुरुषार्थ की जरूरत है विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, और उसने जिस समय जितनी विशुद्धि बढ़ा लिया था, देवायु के बंद के परिणाम हो गए थे, आयु बंद के योग्य परिणाम थे, और समय भी आ गया था, वो आयु बंद करने का जो समय होता है वो भी समय आ गया था, समय पर बंधा, और बंधा तो उतना ही बंधा जितना बंधना था परिणामों के अनुसार, उतना पहले ही बंद पड़ा था, उस बंद के अनुसार वो भवनात्रिक में चले गए, भवनवासी व्यंतरवासी में चले गए। अपन को सदा परिणाम विशुद्ध ही रखना चाहिए, बस एक सिद्धांत बना लो, स्वर्ग में जाने के बाद विचार मत करो कि हम धर्मात्मा थे यहां क्यों आ गए। नहीं, धर्मात्मा भी रहो या अधर्मात्मा भी रहो, परिणाम विशुद्ध हैं तो उसके अनुरूप ही बंद होगा। विशुद्ध परिणाम है तो कम से कम दो गति से तो बचेंगे, त्रिरंज गति और नरक गति से। हमेशा परिणामों को उज्जवल बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो, परिणामों को मत बिगाड़ो। पर यही नहीं होता अपने लिए, थोड़ा भी कुछ हमको छेड़ देता है तो गुस्सा आए बिना रहता ही नहीं। और वह गुस्सा कब तक रहता है? कल तक, देख लूंगा कल क्या करते। कषाय परिणति बहुत बुरी परिणति है जीव की, और इस परिणति को पहले समझना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है मेरे लिए? हम कंट्रोल में क्यों नहीं आ पाते? समता में क्यों नहीं आ पाते? तो इसलिए नहीं आ पाते कि आपको भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान क्या? मैं आत्मा हूं, ये कषाय मैं नहीं हूं। कषाय अलग है, मैं अलग हूं। तो कषाय मैं नहीं हूं और कषाय मेरी नहीं है, तो कषाय को क्यों करूं? ये चिंतन कभी किया नहीं और संस्कार डाला नहीं और बार बार विचार भी नहीं किया इस पर। और कषाय आती है तो हमेशा आ रही है, जा रही है, अनादिकाल से लगी हुई कषाय आना जाना। और कषाय आई, कषाय कर गए, कषाय होने के बाद, कषाय हो जाने के बाद में सोचते हैं हमको ऐसा क्यों हुआ, समझ में नहीं आता। ये बस यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, समझ में नहीं आता। कैसे समझ में नहीं आता? समझने की चेष्टा करो। ये कषाय आपकी है क्या? नहीं है। आप कषाय हो क्या? नहीं। कषाय आपकी भी नहीं और कषाय आप नहीं। तो कषाय को करने की क्या जरूरत है आपको? करना नहीं। तुम अलग हो, कषाय से दूर रहो। कषाय आपका नहीं, कषाय आप नहीं, कषाय से दूर रहो सदा। ये क्यों नहीं हो रहा है? संस्कार, संस्कार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि पहला पासून कैसे छोड़े हम? तो मत छोड़ो, जाओ, छोड़ो मत, जाओ। उससे सुख मिलता है तो ले लो उससे भी। तो कषाय से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। कषाय में सुख क्यों नहीं? कषाय आकुलता का कारण है। फ्रेंड और शीप। बड़ी चीप रास्ता है। अनंत अनुबंधी से ही नहीं बल्कि किसी से भी, कर्म मात्र से फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए। आटो कर्म मात्र से फ्रेंडशिप हमें नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप किससे रखो? आत्मा से फ्रेंडशिप रखो। आत्मा से कैसे फ्रेंडशिप रखोगे? आत्मा तो तुम हो, तुम तुम्हारे लिए कैसे फ्रेंडशिप? जो ऐसे तुम्हारे जैसे वीतरागी कषाय मुक्त जीव है उससे फ्रेंडशिप करो। यानी आयतन, छह आयतन से फ्रेंडशिप करो, फिर सुखी बनने का यही है चीप रास्ता। कर्म मात्र से हमने फ्रेंडशिप कर लिया है। अनंत अनुबंधी एक से फ्रेंडशिप छोड़ने से क्या होगा? हमारा कोई भी कर्म फ्रेंड नहीं है, बस ये संकल्प लो, दुश्मन है। अरिहंत को अरिहंत क्यों कहा? अरि यानी क्या? शत्रु। क्या फ्रेंड? अरि यानी शत्रु। हमारे कर्म हमारे लिए शत्रु हैं, फ्रेंड नहीं। और हमने इन्हीं से फ्रेंडशिप बना लिया है अनादिकाल से। कषाय करते हैं, छोड़ने के लिए साहस नहीं होता। फ्रेंडशिप छोड़ना साहस नहीं कर पा रहे, कैसे कल्याण होगा? और कल्याण चाहते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि पहले कल्याण नहीं चाहते, कल्याण चाहते हैं लेकिन चाह के अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहे हैं। और आचरण करने के लिए हैमरिंग होना पड़ेगा, बार बार हैमरिंग, बार बार हैमरिंग, आत्म तत्व का ज्ञान बार बार सुनना, अध्ययन करना, विचार करना, सतत 24 घंटा, मैं आत्मा अलग हूँ, ये संसार अलग है, परिवार अलग है, कर्म अलग है, शरीर अलग है, सब अलग है, मैं अकेला हूँ, खुद को अकेला बनाओ। अपने आप को अकेला बनाए बिना धर्म का धारण कभी नहीं हो सकता, उस शिव को अकेला ही होना पड़ा जब मांसाहार छोड़ रहा था। क्या पूछा उन्होंने अपने अपने फ्रेंडों से, उसके साथी तो और भी होंगे ना, उनको पूछताछ करके मांसाहार का त्याग करना चाहिए था। नहीं, त्याग के समय में किसी दूसरे के तरफ देखना ही नहीं होता। आपके मन में भाव आ गए, आपने अपने लिए ले लिया, हो गए, बात हो गई, धर्म आ गया। जब आप अकेले रहते हैं तब धर्म आता है। जब आप किसी को, दूसरे को लिए हुए बैठे हैं मन में, धर्म नहीं आने वाला है। धर्म कहता है तुम दो क्यों हो। धर्म पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, तुम दो क्यों हो। तुम्हारे साथी को छोड़ोगे जब आऊंगा, गया लौट के, धर्म चला गया, वापस आऊंगा जब बुलाओगे, पर तब भी जब आऊंगा तब पुनः देखूंगा एक हो क्या दो हो। ये धर्म है। धर्म का दूसरा पर्यायवाची नाम है स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्रता। कहीं भी देख लो, अंतिम उदाहरण अरहंत परमेष्टि है हमारे लिए, एग्जाम लास्ट स्टेज पर बैठे हैं, वो भी दोस्ती छोड़ रहे हैं, आघाती कर्मों को दोस्ती करके रखे हैं कि दोस्ती छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वहां पर भी देखो आप, अरहंत भगवान भी शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर अपने केवल ज्ञानोपयोग को अपने में समेटना पड़ा। शुक्ल ध्यान का जब अवलंबन हम लेते हैं तब अकेला होना पड़ता है क्या? नहीं। अरहंत भगवान ने पूछा, हे अनादिकालीन दोस्तों, हे नौकर्म, हे द्रव्यकर्म, मैं तुम्हारी दोस्ती छोड़ रहा हूँ, छोड़ूं क्या? पूछा क्या? नहीं पूछा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, धर्म धारण के लिए किसी से भी पूछना नहीं, न चेतन से पूछना न अचेतन से। अकेले हो, अकेले ही रहोगे, अकेले ही आए थे। आते समय कोई आया था? अकेले ही आए थे और जाते समय अकेले ही जाते रहे हैं अनादिकाल से। जितने भी, जितनी बार भी हमारा मरण हुआ, अकेला आत्मा ही गया था। कौन आया था? कोई नहीं आया था। मरण के काल में पूछ करके जाते आप, मैं मरूं क्या? पूछ करके कोई मरता? मर ही नहीं सकता, मरना नहीं चाहता, ये बात है। लेकिन मरण आता है कि नहीं? नेचुरली मरण तो कभी ना कभी आने वाला है। उस समय सबको पूछ के जाना चाहिए, पूछ के मरना चाहिए, हे दोस्तों मरने वाला हूं, पूछ के मर रहा हूं। मरण के लिए भी पूछना नहीं पड़ता, जन्म के लिए भी पूछना नहीं पड़ता, धर्म के लिए भी पूछना नहीं पड़ता। ये सब एकांत में ही होते। जब मरते रहते हैं हम अकेले में रहते हैं, जन्म जन्म लेते रहते हैं अकेले में रहते हैं, जब धर्म धारण करते हैं अकेले में रहते हैं। जब भोजन करते रहते हैं अकेले में रहते हैं, दूसरा भले ही बैठा हो पास में लेकिन कोई संबंध नहीं हमारे भोजन के साथ, हमारे टेस्ट के साथ, हमारे चबाने के साथ, हमारे गुटकने के साथ, हमारे भूख मिटाने के साथ, किसी का संबंध नहीं, ग्रास से संबंध रहता है। हम अपने में अकेले में अकेले, इसलिए एकत्व भावना भाव तो धर्म की उपलब्धि हो। एकत्व भावना, आप अकेलो अक्त रे, मरे अकेलो होय, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगान को, साथी सगा ही हमको दिया दगा। कैसा आरोप कर दिया, ये भी गलत, ये दगा नहीं देता, हमने साथी इनको निभा लिया इसलिए हमने अपने को दगा दिया, अपराध हमारा है साथी का नहीं, साथी को दोष देना भी गलत। साथी किसने बना लिया, हमने बनाया, अगर हमने नहीं बना तो साथी का क्या संबंध था हमसे, साथी साथी तो एक वस्तु था, एक द्रव्य था, हमने साथी बना करके हमने अपने को ही दगा दिया। साथी बना लिया इसका अर्थ, साथी बनाने को पर साथी ने हमें को दगा नहीं दिया, जिस समय साथी तुमने बना लिया उसी समय हमने अपने को दगा दिया। परंतु ये सब संसार में सांसारिक जीवन जीते जी ये सभी विकल्प रहते हैं, धर्म के क्षेत्र में ये नहीं रहते। देखो अनायतन को त्याग कर अनायतन को त्याग कर आयतन को अपना लिया, इसका मतलब अनायतन का फ्रेंडशिप छोड़ दिया, द्वेष से नहीं, पार्थ से, द्वेष से नहीं, स्वार्थ से। क्या स्वार्थ? आत्म कल्याण का, मैं मेरे हित के लिए एक का त्याग रहा हूं, एक को ग्रहण कर रहा हूं, तो कल्याण इसी में है इसलिए कर रहा हूं ना, कल्याण इसी में है इसलिए कर रहा हूं, मतलब मैं अपने ऊपर उपकार कर रहा हूं, किसी से न राग कर रहा हूं न किसी से द्वेष कर रहा हूं। अब फ्रेंडशिप इससे क्यों, आयतन से, इसकी मैं आत्म कल्याण के रास्ते पर कहीं अटक जाऊं भटक जाऊं तो उस समय सहयोग पहुंचा दे हमारे साथी, साथी सहयोग करें, तो साथी की, साथी के सहयोग के लिए हम अपेक्षित थे, ये इसमें भी स्वार्थ। आयतन से भी हम क्या चाहते, सहयोग, किंतु आत्म कल्याण के क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है तो आयतनों से ही मिल सकता है, अनायतनों से नहीं मिलेगा, ये अंतर है, ये फर्क है आयतन और अनायतन। एक और बच गया, गुरु मूर्ता, सो इस संबंध में बहुत सुना है, केवल पढ़ना पर्याप्त है। गुरु मूर्ता दोष आरंभ परिग्रह हिंसा से युक्त और संसार कार्य में डुबाने वाले कार्यों में लीन साधु का सत्कार करना, भजना, मानना इत्यादि गुरु मूर्ता है। गुरु कैसे हो, निर्दोष हो, किस प्रकार के गुरु का चुनाव हो, आत्मकल्याण के क्षेत्र में वीतरागी हो, हिंसा से अलिप्त हो, संसार के झंझटों में पड़े हुए न हो, भौतिकता में उलझे हुए न हो, आत्मकल्याण के रास्ते पर स्वयं चलते हो और आत्मकल्याण का रास्ता ही केवल बताते हो, संसार का रास्ता न बताते हो, ऐसे गुरु को आयतन कहा है। आयतन की श्रद्धा आपका सम्यक नहीं, ठीक।